नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंध से, जिसमें बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ है भगवान के एक बहुत ही अनन्य भक्त का, जिनका नाम है श्री वृत्रासुर। हालांकि कई लोगों को ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान के भक्त भी कह रहे हैं और नाम है वृत्रासुर, असुर, तो असुर कैसे हैं और भगवान के भक्त कैसे हैं, ये दोनों एक साथ कैसे संभव हो सकता है। परंतु एक श्लोक हम लेंगे जो वृत्रासुर कहे हैं, जिससे पता लगेगा कि वो असुर हैं या सुर हैं, वो देवता हैं या राक्षस हैं। तो ये षष्ठम स्कंध के 11वां अध्याय है, जिसमें इस अध्याय का शीर्षक है वृत्रासुर के दिव्य गुण। अहम् हरेर् तव पादे कमोलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। इनका कीर्तन अभी तक चालू है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण में रहे? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे? तात्पर्य, इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास, दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपने तीनों धन अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश से प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ये प्रसंग है जब महाराज चित्रकेतु, जिनकी कथा इसी स्कंद में कही गई है, जिन्हें पार्वती ने एक समय श्राप दिया था, जब भगवान शिवजी वो कुछ विरक्तों को वैराग्य का पाठ सिखा रहे थे और बहुत अद्भुत दृश्य था। विरक्त बैठे थे शिवजी के सामने, बड़े बड़े वैरागी योगी तपस्वी, और शिवजी वो उन्हें वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। परंतु दृश्य ऐसा था कि वैराग्य की शिक्षा देते समय उनके गोद में पार्वती बैठी थी। तो कल्पना करो, हालांकि भागवत में कहा गया है, फिर भी मैं ही नहीं कह रहा कि इसके विषय में कल्पना करो, परंतु भागवत में कहा गया है कि शिवजी पार्वती को अपने गोद में रखे हैं और विरक्तियों को वैराग्य का पाठ दे रहे हैं। तो महाराज चित्रकेतु वो वहां पहुंचे और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो महाराज चित्रकेतु हंस पड़े। जैसे कई लोग हंसे हैं तो सावधान, चित्रकेतु महाराज भी हंसे थे। और पार्वती जब उन्होंने देखा कि ये महाराज चित्रकेतु जो हैं वो हंस रहे हैं हम दोनों को देखकर, तो पार्वती ने श्राप दे दिया, असुर बन जाओ। और महाराज चित्रकेतु ऐसा नहीं कि, और वो क्यों हंसे थे, उसका कारण क्या था हंसने का, वो ये नहीं कि वो शिवजी को देखकर शिवजी की कोई खिल्ली उड़ा रहे थे, वो शिवजी को देखकर प्रसन्न चित्त हृदय से हंस रहे थे कि ये केवल शिवजी ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। और बहुत आदर भावना थी उनके अंदर शिवजी के प्रति, परंतु माता पार्वती वो समझ नहीं पाई और उन्होंने श्राप दे दिया, असुर बन जाओ। और महाराज चित्रकेतु उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जैसे श्राप मिला तो तुरंत उसे उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो थे पहले, उसी अवस्था में उस श्राप को भी स्वीकार किया। और इसलिए बहुत ही सुंदर श्लोक में उनका गुणगान हुआ है, नारायण परा सर्वे न कुटश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन। कि महाराज चित्रकेतु जैसे जो भक्त हैं भगवान के, नारायण परायण, ये जो भक्त हैं इन्हें चाहे कोई स्वर्ग भेजे चाहे कोई इन्हें नरक भेजे, एकमात्र उद्देश्य इनका क्या रहता है, नारायण परायण है कि नहीं। और आजकल तो केवल एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि कैसे नारायण परायण के विमुख जाएं, चाहे स्वर्ग में या नरक में, उल्टा बिल्कुल विपरीत। जैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ, हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो तीन गुणों के नहीं बने हुए और भगवान श्री कृष्ण को कभी सरदर्द नहीं हो सकता, हालांकि इतने सारे नास्तिक हैं इस संसार में जो सक्षम है सरदर्द देने के? और हम जैसे भी जो इतने जूझ रहे हैं हमारी भक्ति में, कितना हम सरदर्द देते होंगे भगवान को कि रोज सुबह जब शुरू करते हैं, जैसे ही भगवान आने का योजना बनाते हैं सो गए, तो भगवान पूरी तैयारी में आए, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है सुबह सुबह, चलो देखूं, और जैसे भगवान पहुंचे तो देखा ये तो ठोर रहा है। तो कितनी बार हम भगवान को बुलाते हैं फिर ऐसे ही खाली हाथ भेज देते हैं। तो हमारे भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भगवान को सरदर्द दे सकते हैं, परंतु यहां पर भगवान को एक बार जब सरदर्द हुआ तो उसका प्रयोजन कुछ और था। अब देखिए, हमें जब कभी सरदर्द होता है, होता है कभी कभी, कितनों को हुआ है सरदर्द? अभी हो रहा होगा बहुत लोगों को। तो हमें जब सरदर्द होता है तो क्या क्या आजकल वो क्या क्या एडवर्टाइजमेंट लगाए रखते हैं कि एक गोली लो। एक मैं एक बार इस पे था, एयरपोर्ट पर था, तो एयरपोर्ट पर एक सामने एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, तो एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा था कि सरदर्द कैसे दूर किया जाए। तो एक व्यक्ति रावण बना हुआ है और उसके 10 सर, और सारे सर सरदर्द हो रहा है उसको। अब रावण को यदि सरदर्द होगा तो सारे 10 सरों में होगा। तो रावण के सारे 10 सरों में दर्द हो रहा है, और फिर एक व्यक्ति ये गोली लेकर आता है, बोले कि एक गोली 10 सर ठीक, और बताया जा रहा है कि रावण को बाकी चीजों से सरदर्द नहीं हो रहा था और कोई और ठीक नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि यहां तक कि रामचंद्र जी भी आ गए और ठीक नहीं कर पाए, परंतु ये गोली ने ठीक कर दिया। तो जब हमें सरदर्द होता है तो पूरी दुनिया उल्टी कर लेते हैं उस सर को ठीक करने के लिए कि ये बाम लगाओ, ये गोली खाओ, और इस प्रकार का माहौल हो जाता है कि कई लोग, आज सुबह में बता रहा था, कई लोग कह देते हैं पता नहीं सर दर्द हो रहा है, 2 दिन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया लगता है अंदर। परंतु यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार सरदर्द हुआ तो उन्होंने देखिए कौन सी गोली मांगी, नारद मुनि को बुलाया, और नारद मुनि को बुलाकर भगवान कहते हैं कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है। तो नारद मुनि तुरंत पूछे, दबाऊं थोड़ा? नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं होगा, एकमात्र उपाय है मेरे जो अनन्य भक्त हैं उनके चरण कमलों की धूली, यदि उसका लेप करो मेरे सर के ऊपर, धूली लेप, मेरे भक्तों के चरणों की धूली का लेप यदि करोगे तब जाकर ये सरदर्द कुछ ठीक होगा। तो नारद मुनि के आपके भक्त कैसे देंगे, और कौन है ऐसा आपका भक्त जो ये कार्य करने के लिए वो मंजूर होगा? तो भगवान ने अलग अलग लिस्ट दिया भक्तों का कि ये सब के पास जाओ, और अंत में वृंदावन में जाना जहां पर गोपियां हैं उनके पास अंत में जाना। तो नारद मुनि सब जगह जा रहे हैं, पूछते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा है कि आज थोड़ी समस्या है, आज भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द है। अरे सर में दर्द, चलो चलो चलो, मैं तुरंत बुलाता हूं हमारे वैद्य को, यूनिवर्सल वैद्य को नहीं 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 वो कहा कि उपाय भी वो ही दिए हैं। क्या उपाय है? आपके चरणों की धूलि, चरणों की धूलि और मेरे, और वो भी उनके सर के ऊपर। नारद मुनि आप जो कह रहे हैं आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? यदि ये मैं कार्य करूंगा, मेरे आराध्य देव हैं, उनके चरण कमल हर समय मेरे सर पर होते हैं, और ये आप बात कह रहे हो, उम्र भर जीवन भर नित्यकाल मुझे नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो नारद मुनि ने कहा उनके सर के दर्द का क्या करेंगे, वो मुझे पता नहीं। तो फिर नारद मुनि शिवजी के पास गए, वहां पर भी वही उत्तर मिला। तो फिर जितने भी सारे भक्त का नाम भगवान ने लिस्ट में दिया था सबके पास गए, और सभी ने यही कहा। अंत में नारद मुनि ने देखा कि अब कोई नहीं दिया है, वो कहे हैं कि वृंदावन में ब्रज गोपियों को पूछो, इनको भी पूछ लेते हैं। तो वहां पर गए, और जैसे ही गोपियों ने सुना भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द, तो तुरंत उन्होंने पूछ लिया हम क्या कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके चरणों की धूलि। तो नारद मुनि ने ये वाक्य पूरा भी नहीं किया, वो शुरू हो गए चरणों की धूलि निकालना। तो नारद मुनि, अरे रुको, मेरे को समझाने दो कि ये जो चरण धूलि आप देंगे इसका परिणाम क्या होने वाला है। उनका परिणाम सरदर्द ठीक होगा ना? तो नारद मुनि कहते हैं हाँ, सरदर्द तो उन्होंने कहा है ठीक होगा, परंतु नर्क की यातना, नित्यकाल नर्क की यातना भुगतनी होगी। तो तुरंत वो सारी ब्रज गोपियां पूछती हैं किन्हें, हमें? हां, लेकिन सरदर्द तो ठीक हो जाएगा। हां सरदर्द ठीक हो जाएगा, तब फिर हमें कोई परवाह नहीं। तो नारद मुनि थोड़ा परख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि क्या इन्हें कोई ज्ञान है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और ब्रज गोपियों ने क्या किया कि उन्होंने केवल थोड़ी सी अपनी चरण की धूलि नहीं निकाली, ज्यादा मात्रा में वहां पर ब्रज रज में और अपने चरण रख रख कर रेती निकाल निकाल कर दे रही थी, आगे कभी सरदर्द हो तो रिजर्व में स्टॉक रखो। नारद मुनि को थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टॉक दे दिया अपने चरण धूलि का। तो यहां पर देखिए, ये जो भक्त होते हैं भगवान के, अब किसी का भी सरदर्द, ये तो भगवान का सरदर्द, एक तो वो सरदर्द तो कभी होगा नहीं, होगा तो भी कितने समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, हो सकता है एक पूरे दिन के लिए, दो दिन के लिए। परंतु यहां पर उसके वजह से यदि कोई व्यक्ति को नित्य काल तक नर्क की यातना भुगतनी पड़े, तो क्या यह सौदा मंजूर है किसी को? क्या नारद मुनि यदि हमारे पास आते तो हम तो सोचते, अरे नारद मुनि हमें इतने बड़े भक्त मानते हैं, मैं इतने समय से इन सबको कह रहा हूं, परंतु आज नारद मुनि और भगवान ने जान लिया है। पहले तो हमें ऐसा लगता, फिर यदि नारद मुनि कहते कि नित्य काल तक नर्क की यातना, तब फिर हमारी क्या अवस्था हुई होती। हम इतना प्रयास कर रहे हैं यहां ये जो कलयुगी नर्क की यातना है इससे छुटकारा पाने का। तो महाराज चित्रकेतु स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, कि चाहे अपवर्ग या पवर्ग या नरक या स्वर्ग, चाहे कोई भी अवस्था, हर समय उनका ध्यान क्या रहता है, नारायण परायण है कि नहीं। इसलिए महाराज चित्रकेतु बिल्कुल भी विरोध नहीं किए। और फिर उनका जन्म हुआ वृत्रासुर के रूप में। और वृत्रासुर इनका यहां पर विश्लेषण किया गया है इस छठे स्कंद में। वृत्रासुर दिखने में एक बहुत ही असुरों में भी बहुत कुरूप असुर, एकदम विकराल इनकी काया, बाल ताम्र वर्ण के बाल, आजकल विदेशों में करते हैं वैसा। मैं देखा था एक व्यक्ति, उसका उसकी कमीज थी लाल रंग की और उसके केश थे ताम्र वर्ण के। तो श्रीमद् भागवत के कुछ असुरों का विश्लेषण मुझे याद आ रहा था। तो वैसे बाल और एकदम भयानक चेहरा और रंग एकदम गहरा काला और बेढंगा स्वरूप था, कोई सुडौल शरीर नहीं, बेढंगा स्वरूप बाहर से। तो कोई देखेगा भी तो थोड़ा 10 कदम दूर ही रहेगा। और लंबी कथा है कि वृत्रासुर, उनकी उत्पत्ति हुई क्योंकि इंद्र ने एक ब्राह्मण का वध कर दिया था विश्वरूप, और वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई इंद्र का वध करने के लिए। और इंद्र भगवान के पास गए ये याचना करने के लिए कि आप सहायता कीजिए, आप कोई ऐसा शस्त्र मुझे दीजिए कि मैं वृत्रासुर का वध कर सकूं। तो उन्हें यह बताया गया कि दधीची नाम के एक ऋषि हैं, उनके पास जाइए और उनसे आप दान में क्या मांगिए, उनकी हड्डियां। सोचिए कोई व्यक्ति हमारे पास आए दान मांगने के लिए, जन्माष्टमी आ रही है भगवान की, तो हमें एक वज्र बनाना है आपकी हड्डियों से, तो दधीची मुनि से वो उनकी हड्डियां मांग रहे हैं। और दधीची मुनि उन्हें समझा रहे हैं कि अरे भाई, इस संसार में व्यक्ति जीता है अपने देह के लिए, और मेरी हड्डियां चाहते हो तो इसका देह का अंत करना होगा मेरे, तब जाकर मिलेंगी, और तुम लोग अपने देह को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो। देखो ये सारे देवता अपने देह को बचाने के लिए ये दधीची मुनि का देह को त्याग करा रहे हैं जबरदस्ती, ताकि उनकी हड्डियां मिले और उनकी हड्डियों से एक वज्र बने जो कि इस वृत्रासुर का वध करे। परंतु दधीची मुनि वो बहुत प्रख्यात हुए कि ऐसे दानवीर दधीची जिन्होंने अपने स्वयं की हड्डियां दे दी दूसरों के जीवन को उनकी रक्षा करने के लिए। तो उबर्ज बनाया और फिर इंद्र जाते हैं, वृत्रासुर के साथ युद्ध प्रारंभ होता है। और वृत्रासुर जानते हैं कि ये इंद्र जो वज्र लेकर आए हैं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में वज्र बना है मेरे विनाश के लिए या मेरे उद्धार के लिए, क्योंकि वृत्रासुर उस शरीर को त्यागने के पश्चात भगवान के धाम जाने वाले थे। तो यहां पर इंद्र जब वृत्रासुर के समक्ष आते हैं तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं, और वृत्रासुर इतने सारे देवताओं को मार, यहां तक कि वो राक्षस जो थे वो भी भाग जाते हैं। जो वृत्रासुर के साथ राक्षस आए वो भाग गए, देवता भाग गए, और वृत्रासुर सबको चिल्ला चिल्ला कर, अरे कायर व्यक्तियों, यही तुम्हारे अंदर शूरवीरता है, और सबको पुकार पुकार कर ललकार रहे, लड़ो मुझसे। आजकल यदि कोई झगड़ा करता है और कोई भाग जाए तो वो भाग, देखो भाग रहा है। परंतु यहां पर वृत्रासुर पकड़ पकड़ कर युद्ध मेरे साथ करो, पकड़ पकड़ कर युद्ध करा रहे हैं इनसे, और इंद्र भी डर गए। तो इंद्र, उनके अंदर थोड़ा संशय हुआ कि क्या ये वज्र जो मुझे मिला है इस वृत्रासुर के ऊपर काम करेगा कि नहीं, ये इतना विशाल इसकी इसका शरीर है, पता नहीं ये वज्र काम करेगा कि नहीं। तो इंद्र संशय करने लगे और तभी वृत्रासुर वो इंद्र को कहते हैं कि अरे इंद्र, स्वयं भगवान ने जो आदेश दिया है उस आदेश के ऊपर संशय कर रहे हो, किस प्रकार के भक्त हो तुम भगवान के? अरे यहां पर ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा, और ये किसने लिखा है? विधाता ब्रह्मा जी ने नहीं, स्वयं भगवान ने, स्वयं भगवान लिखे हैं कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा, और वो भी इस वज्र के द्वारा। तो भगवान के कथन अनुसार यदि मेरा वध तुम्हारे हाथों इस वज्र से होना है तो संशय क्यों कर रहे हो, उठाओ और प्रहार करो। और वृत्रासुर, उनका प्रयोजन क्या था? वो कहते हैं इंद्र को कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम ये प्रहार करो मेरे ऊपर कि मैं मरूं, ताकि मुझे भगवत धाम प्राप्त हो और तुम्हें केवल तुम्हारा इंद्रलोक। साफ साफ वृत्रासुर इंद्र को कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए आचार्य बताते हैं कि हमारी साधना भक्ति में हमारी भी जो धारणा है कई बार इंद्र के समान हो जाती है, कि माया से लड़ने के लिए भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है जो उस वज्र के समान है, परंतु हमें कई बार डाउट आता है, संशय, पता नहीं ये महामंत्र को महामंत्र तो कहा गया है और अच्छी ट्यून में भी इसे गा सकते हैं, अलग अलग ट्यून में इसे गा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है ट्यून में गाकर इसे सुनना महामंत्र को। मेरे पास 10-10 सीढ़ियां हैं अलग अलग ट्यून के महामंत्र की। तो बाकी सब कुछ अच्छा है इस महामंत्र का और बहुत आसान है याद रखने में भी, कोई कठिन संस्कृत नहीं है, गाने में बहुत मधुर है, परंतु ये मेरा हृदय शुद्ध करेगा कि नहीं ये संशय है, बाकी सब ठीक है। तो कई बार ये संशय होता है मन में कि क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर उतनी शक्ति है कि नहीं, और इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलयुग के लोग संशय करेंगे, ये गुण है हम कलयुग वासियों का कि हम भगवान के जितने भी कार्य होते हैं, वेदों के जितने भी कथन हैं, उस पर हर समय हम संशय करते हैं। जैसे कई बार जब हम कॉलेज के कोई प्रोग्राम लेते हैं या कोई नए व्यक्तियों को जब प्रचार करना शुरू करते हैं तो इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं, और कई बार प्रश्न कैसे होते हैं कि आप ये सर क्यों मुंडवाते हैं, अब इतने सारे लोग बिना बाल के घूमते होंगे, परंतु कोई व्यक्ति यदि भगवान के लिए सर मुंडवाए तो तुरंत प्रश्न कि सर क्यों मुंडवाया है, तो सर मुंडवा लिया ठीक है, परंतु ये पीछे छोटा सा क्यों रख दिया ये बाल, और अलग अलग प्रश्न, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते आप, चाय कॉफी क्यों नहीं पीते। तो एक बार एक व्यक्ति, वो जब मैं एयरफोर्स में था तो वहां पर एक व्यक्ति हर बार आकर इसी प्रकार के प्रश्न पूछता, वो चाहता था कि मैं शास्त्र से कुछ कहूं, वो चाहता था कि शास्त्रों में कहा गया है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो शास्त्र किसने लिखे, ये सब उसके आगे के प्रश्न रेडी थे और मैं जानता था। तो तो एक बार आ गया और पूछने लगा, तुम्हें मैंने देखा तुम वो प्याज व्याज निकाल रहे थे बाहर और तुमने वो कुक को कहा बिना प्याज की सब्जी बनाओ, प्याज क्यों नहीं खाते? तो मैं जानता था कि अगर मैं कहूंगा पद्म पुराण में कहा गया है कि प्याज लहसुन जो है वो गौ हत्या के पाप से उत्पन्न हुआ, ये सब मैं यदि कहना शुरू कर दूं तो फिर पद्म पुराण किसने लिखा, कहां का है, कहां है, बोलो कौन सा श्लोक है, तुम्हारे पास है पद्म पुराण, ये सब कुछ प्रश्न उसके हो जाते थे। तो उसने जब पूछा क्यों नहीं खाते प्याज लहसुन, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। बस अब आगे क्या कहे, अच्छा नहीं लगता भाई। एक मेरा मित्र आया था, वो मुझे पूछ रहा था कि ये तुम धोती वगैरह क्या है ये बेडशीट पहन के बैठे हो, चद्दर बांध ली है। तो मुझे जब उसने पूछा कि ये धोती क्यों पहनते हो, तो मैंने कहा बहुत आरामदायक है। तो श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया था, एक महिला आई और महिला ने प्रभुपाद जी को पूछा, अमेरिका की महिला टीवी रिपोर्टर थी, और प्रभुपाद जी को पूछती है स्वामी जी आप ये सर क्यों शेव करते हो, और वो मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप ये पैर क्यों शेव करती हो, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सर को ठंडा रखना चाहिए और पैरों को गर्म रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा केवल सर को ठंडा रखने के लिए, बस सर ठंडा रहता है। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहे थे मंदिर, तो एक व्यक्ति साइकिल पर आते हुए जोर से अपनी साइकिल रोकी और प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ ही रहे थे तो पूछा व्हाई डू यू कैरी दिस स्टिक, ये डंडा क्यों लेके घूमते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कुत्तों को भगाने के लिए, और बैठ गए चले गए। ठीक, फिर प्रभुपाद जी ने कहा तुम जैसे। तो अलग अलग प्रश्न उठते हैं लोगों के कि ये सर क्यों मुड़, ये तिलक ऐसे ऊपर क्यों। तो मैंने कहा नीचे करते तो पूछते नीचे क्यों, ऊपर ऐसे क्यों, ये क्यों, ये कंठी माला ही क्यों, यहां पर ही क्यों। तो हमने पूछा कि जब इस भौतिक संसार में जो कुछ ये भौतिकतावादी व्यक्ति करता है उसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न नहीं, आजकल बंबई शहर में फैशन के नाम पर उठपटांग क्या कुछ नहीं हो रहा। एक व्यक्ति ने अपने पूरे चेहरे पर कहां कहां से बाली निकाल रखी थी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह पर, वो क्या कहते हैं उसे, इयररिंग टाइप बांध रखी थी सब जगह पर। तो मैं कहा कि बैलों को भी इतना नहीं बांधा जाता है। वो बैल की तरह हर जगह पर वो बांध रखा है सब जगह पर, तो उसे कोई पूछेगा नहीं क्यों इतना सब कुछ कर रखा है। वो चेहरे पर या हाथों पर यहां वहां वो टैटू करते हैं, कोई पूछता नहीं क्यों है सब। जैसे ही तिलक लगा लिया, क्यों ये तिलक क्यों। तो संशय, तो भक्ति में कई बार हमारे अंदर भी ये संशय का जो असुर है ये घुस जाता है। इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन इस नाम से पुकार रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन भगवान को मधुसूदन क्यों पुकार रहे हैं, क्योंकि मधु एक असुर था जिसका वध भगवान ने किया था, इसलिए उन्हें नाम मिला मधुसूदन। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन के अंदर भी ये संशय रूपी राक्षस घुस गया था मधु जैसा, तो इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन पुकार रहे हैं कि जैसे आपने उस मधु का वध किया था उसी प्रकार से मेरे हृदय में मेरे मन में ये जो संशय रूपी असुर पैदा हुआ है इसका वध आप कीजिए। और इसलिए देखिए माया जो है वो हमारी साधना भक्ति में वहीं से शुरुआत करती है प्रवेश करने का, कहां से? संशय, वो संशय पैदा करती है। हम जब जप कर रहे हैं और जप में नींद आ रही है, कोई रुचि नहीं मिल रही और खत्म करना चाहते हैं, तभी माया ये अवसर देखती है और माया कहती है देखो मैंने कहा था ये जो कुछ जप वगैरह है कोई आनंद नहीं है इसके अंदर, ये जप छोड़ो, वो सामने टीवी बंद है, टीवी बंद होने के लिए नहीं रखा तुमने, दूसरा हाथ खाली है तुम्हारा, एक हाथ में माला होगी दूसरे हाथ से रिमोट दबाओ, और ज्यादा कुछ नहीं करना, खाली एक बटन दबाना है, इसमें तो देखो 2 घंटा घुमाना पड़ता है, 2 घंटा घुमाने के बाद भी कोई आनंद तुम्हें नहीं मिल रहा, यहां पर केवल इतना सा एक बटन दबाओ और सामने फिर देखो आनंद ही आनंद, परमानंद। तो माया उसी प्रकार से संशय का बीज बोती है, जैसे इंद्र के अंदर जब इंद्र ने देखा वृत्रासुर को अपने सामने तो इंद्र संशय करने लगा कि क्या ये वज्र पता नहीं काम करेगा कि नहीं, पता नहीं मैं मारा जाऊंगा हो सकता है, या मुझे बेवकूफ बनाने का तरीका है शायद। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और कहा स्वामी जी आप ये लोग हरे कृष्णा करते हैं और कृष्ण कृष्ण आपके भगवान हैं, अंत समय यदि भगवान कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति नहीं तो क्या करेंगे आप? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा यदि हम ये भी मान लें कि भगवान श्री कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति न है तो भी हमने आनंद ही आनंद लिया, नृत्य किया, कीर्तन किया, प्रसाद खाया, परंतु यदि तुम अपना जीवन जो कुछ कर करके बिता रहे हो, टीवी देख देख करके जो बिता रहे हो, अंत समय यदि भगवान श्री कृष्ण हैं तो प्रभुपाद जी ने कहा ऑल द बेस्ट। तो माया देवी वो इस प्रकार से संशय का बीज बोती है और उसे फिर धीरे धीरे पानी दे देकर सींचती है माया, और जब वो बीज एक पौधे के रूप में बढ़ता है, वो पौधा एक पेड़ के रूप में, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि हमें लगता है कि इस संसार का जो भोग है वही प्रैक्टिकल है, वही व्यावहारिक है। तो यहां पर देखिए वृत्रासुर याद दिला रहे और वो कहते हैं सुंदर श्लोक में अहम हरे तव पाद एक मूलम, कि मेरी एकमात्र इच्छा है। यहां पर देखिए वृत्रासुर भगवत संदेश दे रहे हैं इंद्र को, हालांकि असुर हैं, असुर कुल में जन्मे और असुर योनि में असुर रूप है उनका, परंतु इंद्र को उपदेश दे रहे हैं भगवत संदेश का, और ये सब बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि के जो चरण कमल हैं वही एकमात्र सहारा है सबके, जीवन आधार यहां पर कहा गया है, और ये रणभूमि में ये सब कुछ हो रहा है। तो रणभूमि में उपदेश बहुत हुए हैं, कृष्ण ने अर्जुन को कहां उपदेश दिया? रणभूमि में। यहां पर वृत्रासुर इंद्र को उपदेश दे रहे हैं रणभूमि में, और हम लोग जो साधना भक्ति में लगे हैं हम भी रणभूमि में हैं। रोज सारे अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा होना पड़ता है सुबह सुबह, और सुबह सुबह माया जो है वो भी तैयार रहती है। सुबह सुबह माया के जो शस्त्र हैं वो अलग होते हैं, आलस्य। बस समझ में नहीं आता माया ने कहां से वो अस्त्र फेंका। तो सुबह सुबह जब माला हाथ में लेते हैं या मंगल आरती में, तो आलस्य का अस्त्र ऊपर गिरता है हमारे ऊपर। यदि हम अपने अस्त्र से तैयार नहीं तो फिर वो अस्त्र हमारे ऊपर हावी होता है। तो यहां पर वो उपदेश दे रहे हैं इंद्र को, और बहुत ही सुंदर वो कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर इंद्र तैयार हैं वज्र लेकर वृत्रासुर को मारने के लिए, और वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे श्री भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल के शरण में रहे। दास अनुदास, वो केवल दास नहीं बनना चाहते बल्कि दासों का दास बनना चाहते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना करने गए अमेरिका में, तो उनकी प्रार्थना में वो क्या लिखते हैं, वो ये नहीं लिखते कि मुझे फाउंडर आचार्य बनाए इस्कॉन का, मार्की ने भागवत धर्म उस भजन में वो ये सब कुछ नहीं लिख रहे कि मुझे बहुत बड़ा गुरु बनाओ इन हिप्पियों का, अमरीकी लोगों का, मुझे इस्कॉन संस्था का संस्थापक आचार्य बनाओ। वो क्या कहते हैं कि मैं एक केवल कठपुतली हूं हे कृष्ण आपके हाथ की, और मैं एक भिक्षुक के रूप में, वो अपने आप को एक भिक्षुक कह रहे हैं प्रभुपाद जी, एक भिक्षुक के रूप में आपसे भिक्षा मांग रहा हूं कृपा की। अब देखिए इस संसार में लोग जब कोई नौकरी करने जाते हैं और लोग जब कुछ पद हासिल करना चाहते हैं, तो लोग दासानुदास नहीं बॉस अनुबॉस बनना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से प्रमोशन पाकर बॉस बनूं। अभी ऑफिस में यदि आप पूछो, जब कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो वहां पर वो हर साल या दो तीन साल बाद प्रमोशन चाहता है, उसके लिए परीक्षा वगैरह होती है, प्रमोशन की परीक्षा। कोई ऑफिस में देखा है कि परीक्षा लिख रहा है कि मैं हेड क्लर्क से क्लर्क बनना चाहता हूं, हेड क्लर्क का सेवक, उसके लिए परीक्षा लिख रहा हूं, और उसका भी सेवक उसके अगले साल, और जितना मैं इस ऑफिस में काम करता रहूं उतना अधिक मैं नीचे जाना चाहता हूं। परंतु यहां पर देखिए भक्ति में एक जो भक्त है, इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को यदि हमें देखना है, तो जैसे हम एक बहुत विशाल पर्वत को यदि देखना चाहते हैं जो बहुत दूर है, तो उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, दूरबीन, बायनोक्युलर जिसे कहते हैं, दूरबीन। तो इस दूरबीन की तुलना इस्कॉन संस्था से की गई है, और दूरबीन शक्तिशाली कब बनता है, जितने ज्यादा लेंस होते हैं उसके बीच में उतना शक्तिशाली वो दूरबीन होता है, उतना निकट उस वस्तु को दिखाएगा वो दूरबीन, जितना ज्यादा लेंस उसके अंदर होगा। तो यदि इस्कॉन दूरबीन के समान है, तो वो लेंस कितने होने चाहिए, और उनकी तुलना किससे की गई है, भक्तों से, कि जितने भक्त हमारे और कृष्ण के बीच में होंगे उतना निकट हम कृष्ण को देख पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा, वी वॉन्ट टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट 100 times, कि 100 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा। और यही प्रार्थना चित्रकेतु वृत्रासुर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहेगा। यहां पर देखिए, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण करना है तो वृत्रासुर कह रहे हैं कि जब तक हम भक्तों के दास नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान के गुणों का स्मरण नहीं कर पाएंगे। और स्मरण वो कह रहे हैं किस प्रकार से उन्हें करना है, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, मेरा शरीर आपकी प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तीन धन हैं, तीन प्रकार के धन हैं हमारे, और वो कौन से धन हैं, मन वाणी तथा शरीर। और इस संसार में सभी व्यक्ति केवल ये जो त्रिधन हैं, ये तीन धनों को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने मन के रंजन के लिए अलग अलग प्रयोजन करता है, देह रंजन के लिए अलग अलग प्रयोजन करता है, और अपनी इस वाणी को हर समय कुछ कुछ न कुछ बोलने में या गाने में लगाए रखे। तो जैसे कल मुझे एक प्रश्न पूछा गया था कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग कीर्तन करते हो, इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से कैसे मन में कोई बदलाव हो सकता है। तो हमने पूछा कि देखो, आप जब कोई सिनेमा का गाना सुनते हो तो तुरंत लोगों के अंदर कुछ बदलाव पाया जाता है ना, वो भी गाना शुरू करते हैं या ऐसा ऐसा बजाना शुरू करते हैं, कई बार भक्त भी एक हाथ में माला रहती है, और यदि किसी मार्केट से गुजर रहे हैं और वहां पर कोई उनका चहिता गायक और उनका चहिता पुराने जमाने का गीत जो चल रहा होता है, तो यहां पर ये ऐसे घूम रही है, ये हाथ ऐसे घूम रहा है और ये थोड़ा उसके साथ बीट लगा रहा है। तो हमने कहा कि जब सिनेमा का गाना सुनते हैं तो कुछ अंदर बदलाव लगता है ना, क्या गाना है, फिर से लगाओ। तो मतलब शब्द ध्वनि में, साउंड वाइब्रेशन में देखिए कितनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि कहा गया है जीवाग्रे वसती लक्ष्मी, जीवाग्रे मित्र बांधव, कि जीवा के अग्र भाग पर है लक्ष्मी और हमारे मित्र और शत्रु सभी। हमारा बंधन इस जीवा के अग्र भाग पर है और हमारी मुक्ति इस जीवा के अग्र भाग पर है। कैसे हम इस जीवा का उपयोग करें, इसलिए एक उदाहरण दिया गया है कि बहुत बड़ा पानी का जहाज हो तो उस पानी के जहाज को यदि किसी दिशा में मोड़ना है, बाईं या दाहिनी दिशा में मोड़ना है, तो उसके नीचे एक छोटा सा एक यंत्र लगा होता है जिसे कहते हैं रडर, बहुत छोटा सा होता है और वो दिखता भी नहीं, वो पानी के अंदर रहता है, और वो जो रडर है उसको जिस हिसाब से आप हिलाओगे तो वो इतना बड़ा जहाज वो या तो दाहिने जाएगा जहां पर वो रडर हिला है, या फिर बाएं जाएगा जहां पर वो रडर हिला है। तो उसी प्रकार से ये इतना बड़ा शरीर हमारा है वो उस जहाज के समान है, और इसमें ये 1.5 इंच की जो जिह्वा है वो उस रडर के समान है, और ये जिह्वा भगाती रहती है, चलो अभी वहां का जो रेस्टोरेंट नया खुला है वहां चलो खाने के लिए। तो ये जो जिह्वा है फिर ये आज्ञा देती है इस विशाल काया को, तो जिह्वा के आज्ञा से पैर शुरू करते हैं चलना, आंखें शुरू करती है देखना कहां है वो रेस्टोरेंट। तो ये इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, जिह्वार लालसा इति उति धाय शीष्ण उष्ण शीष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। इति उति धाय, जो इधर उधर भागता रहता है इस जिह्वा के लालसा से, तो वो केवल अपने उदर और शीष्ण इसके वशीभूत रहता है तो कृष्ण नाही पाए, बाकी सब कुछ मिल जाएगा कृष्ण के अलावा। तो इसीलिए ये जो तीन धन हैं यहां पर कहे गए हैं, हमारी वाणी मन और शरीर, ये तीनों को भगवान की सेवा में लगाना है। अब ये किसकी सेवा में लगे हुए हैं, तीनों मन को लगाए हैं इंद्रिय भोग में, वाणी को लगाए हैं इंद्रिय भोग में और शरीर को तो लगाए हैं। तो यहां पर वृत्रासुर ये केवल इस तीन धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं और इसके द्वारा हम भगवान का स्मरण नित्य रूप से कर पाएंगे। अब देखिए ये जो मन है हमारा, ये जब हम भगवान पर लगाने का प्रयास करते हैं उसी समय ये मन विरोध कर किसी और विषय और कभी नहीं सोचेगा, बाकी समय ये मन जो है हो सकता है कि शांति का अनुभव हमें दे। कई बार लोग आकर कहते हैं कि मैं हरे कृष्णा में आने से पहले बहुत शांति का जीवन जी रहा था, कहीं पर भी मुझे जाना होता मैं चला जाता, कुछ भी देखना होता देख लेता, कुछ भी खाना होता खा लेता। अब जब से मैं ये नियमों का पालन करना शुरू किया हूं तो मैं कहीं पर जा रहा हूं तो सबसे पहले ये ठीक है कि नहीं, कुछ सामने कुछ खाने के लिए किसी ने रख दिया तो तुरंत ये ऑफर किया कि नहीं, इसके अंदर क्या है, इसका पैकेट लेके आओ, उसमें सब कुछ देखना है, कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और जीवन बहुत अशांत लगता है, परंतु वो जो शांति पहले हमें मिल रही थी पता है उसे क्या कहते हैं, स्मशान शांति। ये सुना है शब्द, स्मशान में बहुत शांति पाएंगे आप। कब्रिस्तान में जाइए रात के 12 बजे, शांति शांति। परंतु वो शांति कैसी है, भयानक, वो भयावह है वो शांति। और यदि किसी मुर्दे को कफन में डाला गया है, मुर्दे को कफन में जब डालते हैं तो बहुत शांति से कफन में सोता है वो, तो जो कफन है उस मुर्दे के लिए बहुत आरामदायक है। तो अंग्रेजी में एक शब्द है जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन, हमारे आराम का दायरा, जिसे हम बहुत परिश्रम से बनाते हैं, हमारे आराम का दायरा, कि जहां पर मैं देखूं चखूं सूंघूं स्पर्श करूं वो सब कुछ मेरे आराम के दायरे में होना चाहिए। और हम ये आराम के दायरे की दीवार बना बना कर अपने जीवन में खड़ा करते हैं, और जब कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना जब हम श्रवण करते हैं कि हमें दासानु दासानु दास बनना है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना है, चार नियम का पालन करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो हमें पूछा जाता है कि उस आराम के दायरे से क्या आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब तक वहां से बाहर नहीं निकले हम तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं मिलेंगे। जैसे नारद मुनि जब मृगरारी को प्रचार कर रहे थे, मृगरारी की कथा आपने सुनी होगी, जानवरों को अधमरा कर मार छोड़ दिया करता था वो, तो नारद मुनि आकर मृगरारी को केवल उन्होंने बताया कि तुम क्या यातना भुगतने वाले हो ये सब कार्यों के कारण। और फिर मृगरारी ने तुरंत पूछा कि बताओ मैं अब क्या करूं इसे बचने के लिए। तो तुरंत नारद मुनि ने कहा तुम मानोगे मैं जो कहूंगा? हां जो कहोगे मानूंगा। तो नारद मुनि ने कहा वो जो धनुष है तुम्हारा जिससे तुम ये सब शिकार करते हो तोड़ो। और कुछ नहीं कहा कि क्यों तोड़ो, इसके बाद मैं क्या देने वाला हूं, कुछ नहीं, पहले तोड़ो। अब मृगरारी का गुण क्या था कि आगे क्या मिलने वाला है ये सब कुछ नहीं जानते हुए केवल नारद मुनि पर विश्वास रखा, श्रद्धा रखी और धनुष तोड़ दिया। और जब मृगरानी ने वो धनुष तोड़ा तब जाकर मृगरारी को भगवान श्री कृष्ण की भगवत भक्ति मिली। तो मृगरारी के समान हमारे भी धनुष हैं जो हम अपने आराम के दायरे में उसे सुरक्षित रखे हैं। कभी कभी जब पूरा हो जाता है तब उसे मैं निकालता हूं। हमारे इंद्रिय भोग के साधन, और हम सब जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कौन कौन से साधन हैं हमारे इंद्रिय भोग के, कौन कौन सी जगह है जहां पर हम वो इंद्रिय भोग को पाना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम सब के हैं वो धनुष। और नारद मुनि जैसे भक्त वो क्या पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारी माला कहां है, वो पूछते तुम्हारा धनुष कहां है, वो जो तुम्हारा इंद्रिय भोग का साधन है वो कहां है उसे तोड़ो। और जब उसे तोड़ने के लिए पूछा जाता है तब फिर नानी याद आती है नाना के साथ। जब ये पूछा जाता है कि कौन सा इंद्रिय भोग है जिसे हम सुरक्षित उस आराम के दायरे में रखे हुए हैं तो उसे हम अर्पित नहीं करना चाहते। जैसे बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया वामन देव को, परंतु वामन देव क्या चाहते थे, तुम्हारा सर। और अंत में जब बलि महाराज ने अपना सर अर्पित किया तब उन्हें पद मिला आत्म निवेदन का। पूर्ण प्रकार से शरणागत जब वो हुए तो उसी प्रकार से ये जो आराम का दायरा है उसकी तुलना मुर्दे के कफन से की गई है। मुर्दे के लिए आराम का दायरा कौन सा है, वो कफन। आराम से सो रहा है परंतु मृत है, कोई जीवन नहीं। उसी प्रकार से यदि हम हमारी साधना भक्ति में केवल अपने आराम के दायरे को और सुदृढ़ बनाते रहें ये सोचते हुए कि मुझे भक्ति करनी है परंतु आराम से, तो आराम से भक्ति होनी चाहिए, सुखपूर्वक। चैंट एंड बी हैप्पी प्रभुपाद ने कहा है ना, तो मुझे मुस्कुराते हुए हंसते हुए इस प्रकार से भक्ति में आनंद लूटते हुए भगवत धाम जाना है। हां वो सब कुछ मिलेगा परंतु यदि बगल में उस धनुष को पकड़े हुए हैं हम मृगरारी के, तो भगवान वो आनंद नहीं, उस धनुष को गिराने का अलग अलग प्रयास और हमारे लिए योजना बनाकर देंगे और वो थोड़ा कठिन जाएगा कुछ समय के लिए। उस आसक्त जिस धनुष से हम हैं उसे छोड़ना, इसीलिए भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप कर सकता है, परंतु यदि भगवान के शरणागत होना है वो दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्त्रेशु, वो बहुत ही दुर्लभ मनुष्य है जो वो कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र तो इस संसार में बहुत लोग जप करते हैं, यहां तक कि मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, परंतु यदि भगवान को शरणागति देनी है अपनी, तो उसके लिए हमारा सर्वस्व, सर्वस्व तोमार चरणे सोपिया, तोमार कुकुर, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैसे एक कुत्ता, पिछली बार हम थोड़ा कुत्ते के विषय में कह रहे थे, जैसे एक कुत्ता वो अपना सर्वस्व दे देता है अपने मालिक को, उस प्रकार से हमें भगवान को जब तक हम सर्वस्व नहीं देंगे, इसलिए जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो मुक्त कर दूंगा मैं आपको सभी पापों से, कब? सर्वधर्मान। तो जब तक सर्वधर्मान परित्याग नहीं होगा तब तक सर्व पापेभ्यो मोक्षयी नहीं होगा। दो बार सर्व इस शब्द का इस्तेमाल भगवान ने किया है, एक बार नहीं केवल। तो इसीलिए इस संसार में हमें सब कुछ मिल जाएगा, भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा, परंतु यदि हमें भगवान चाहिए तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे आसक्ति का धनुष तोड़ना होगा और हमें उस आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। और वो आराम का दायरा नहीं है, वो भ्रम है कि हम उसे आराम का दायरा, हमारा कंफर्ट जोन मान रहे हैं। इस संसार में भगवान के अलावा जो कुछ हम प्रयोजन करते हैं हमारे सुरक्षा के लिए, उसकी तुलना की गई है रेती के महल से। रेती का महल जब एक बालक बनाता है समुद्र के तट पर, देखा होगा, हमने भी बहुत बनाए होंगे बचपन में, समुद्र के तट पर बहुत घंटों लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चे रेती का महल, और वो रेती का महल उसके अंदर अलग अलग वो डेकोरेशन भी लगाते हैं, ये देखो ये मेरा कमरा, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बनाया मैंने। और मैंने मनपसंद की टाइल लगाई है अंदर रेती की, सब रेती की। तो सब कुछ, ये मेरा कमरा, ये पापा का कमरा, ये बड़े पापा का कमरा, ये किचन, ये मेरे खेलने का कमरा, ये वो, बड़ा बड़ा सब कुछ, रेती का बड़ा महल बना लिया उस बालक ने। और पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं अरे मूर्ख, जैसे कि कई बार वो नहीं होते, बालक को कहते हैं अरे मूर्ख वो ढह जाएगा, और पता नहीं कि समय की जो लहर है वो उसके भी, वो बाप का घर भी ढहने वाली है उसके साथ साथ। तो बाप पुत्र को कहता है कि अरे मूर्ख, ये लहर जो आएगी वो ले जाएगी ये पूरे रेत के महल को। तो बालक क्या कहता है, अच्छा ये लहर ले जाएगी पूरे, इतने घंटों से मैं रेती का महल बना रहा हूं, आपका भी कमरा बना है? वो भी, हाँ वो भी। तो फिर वो बालक क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है तो मैं एक बाउंड्री वॉल बनाता हूं, एक सुरक्षा की दीवार, एक सुरक्षा की दीवार बनाऊंगा मैं, जिससे वो लहर आके महल को नहीं ढोएगी। तो बाउंड्री वॉल किसका बनाया, रेती का। तो महल बनाया है रेती का और बाउंड्री वॉल बनाया है रेती का। तो यही जो प्रयोजन एक भौतिकतावादी व्यक्ति करता है अपने जीवन में, कि ये जो मेरा आराम का दायरा है वो रेती के महल के समान है, और यदि उसे सुदृढ़ बनाने के लिए वो और कोई भौतिक प्रयास करे तो वो भौतिक प्रयास है रेती का कंपाउंड वॉल, उसकी सुरक्षा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे जो उदाहरण हैं वृत्रासुर के जैसे, हालांकि बहुत सुंदर प्रसंग है, हम एक बार इस पूरे प्रसंग को लेंगे और इस प्रसंग में हम देखेंगे कि क्या गुण हैं वृत्रासुर के। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसंग में वृत्रासुर एक असुर है और इंद्र एक असुर, क्योंकि इंद्र संशय कर रहे हैं और वृत्रासुर पूर्ण विश्वास श्रद्धा भक्ति से वो कह रहे हैं चलाओ ये वज्र मेरे ऊपर। और इंद्र ने जब चलाना शुरू किया वृत्रासुर, वृत्रासुर कोई आसान व्यक्ति नहीं था, कोई बहुत साधारण सा शत्रु नहीं था। पूरा एक साल लगा इंद्र को वृत्रासुर के गले को काटने में। इतना सुदृढ़ गला था वृत्रासुर का, एक साल तक वो वज्रपात का हेक्सो चला रहा था और एक साल तक वृत्रासुर भगवान का नाम स्मरण करते हुए वो अपना जीवन बिता रहे थे। अब देखिए, हम लोग जब सुबह माला लेते हैं हाथ में, यदि कुछ मच्छर भी आ जाएं तो आज माला अब नहीं होगी ठीक से, मच्छर बहुत काट रहे। कोई वो कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, कलयुग में देखो हरि नाम के लिए कौन सी अगरबत्ती लगाते हैं, कछुआ छाप। तो कोई कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, पंखा चालू करो, ये करो, केवल कुछ मच्छर का। यहां पर देखिए कि ये पूरा वज्र चला रहे हैं इंद्र वृत्रासुर के गले पर और उनका शुद्ध नाम चल रहा है। तो मानो कल जब हम सुबह हमारा हरे कृष्ण महामंत्र करने बैठे और कोई व्यक्ति वज्र नहीं एक किचन का चाकू ले आए और उसके भी उल्टे साइड से यदि घुमाना शुरू करे, यहां पर करो माला करो, तो कितनी माला होगी हमारी। यहां पर देखिए वृत्रासुर कितने वो निमग्न थे कि यहां पर वज्र चल रहा है और वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, उनका शुद्ध नाम हो रहा। तो इसीलिए इन सब के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हम सब पर वज्र चलने वाला एक दिन, ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर वज्र नहीं चलने वाला, चाहे हम कितनी भी बड़े कॉलर की शर्ट पहने, वज्र चलने वाला है और वो है काल रूपी वज्र हमारे ऊपर। और यदि उस वज्र से हमें बचना है, या एक भक्त जो है वो बचना नहीं चाहता, वृत्रासुर तो आराम से इंद्र को मार सकते थे परंतु वृत्रासुर चाहते थे कि इंद्र वो वज्र का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इंद्र का नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा, इसलिए उन्हें कोई इंद्र से भय नहीं था और वज्र से भय नहीं था। भगवान का आदेश है, उनकी भविष्यवाणी है, इसलिए वज्र मेरे ऊपर चलना चाहिए। तो यही हम शिक्षा लेते हैं आज के इस श्लोक से कि ये जो तीन धन हैं, हमारे मन वाणी और शरीर, इसे जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण सेवा में नहीं लगाएंगे, जब तक उस आराम के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होने वाले। मृगरारी का उदाहरण याद रखना है, मृगरारी ने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया जब उस धनुष को तोड़ा। तो जब तक हम अपनी आसक्ति के धनुषों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमारा मुख नहीं हो सकता। श्री वृत्रासुर सुर की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।